కదామహం దదాతిస్వపదాంతికం వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితం నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశకారిణి శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే तो आज आज के सेशन में हो सकता है आपको कुछ पीछे से कुछ कुछ आवाजें आएंगी, क्योंकि मैं मंदिर में नहीं हूँ अभी। आज सुबह हम लोग बड़ौदा के पास के एक गांव में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आए थे, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन और कीर्तन चल रहा है ऑलरेडी, और मैं जो हमारा वैन है, बुक का जो वैन है, उसके अंदर क्लास दे रहा हूँ। तो आई होप सिग्नल तो क्लियर होगा, बट बैक से कुछ आवाजें आ सकती है मार्केट प्लेस होने के कारण। मुझे बताइएगा शिवम प्रभु, अगर आवाज में वो क्लियरेंस नहीं आता है तो मुझे एक बार बताइएगा, इन केस बीच में ऐसा होता है तो।
ओके प्रभु जी,
हालांकि सिग्नल अभी क्लियर है, बट केवल बैकग्राउंड साउंड कुछ आ सकता है, कुछ पीछे अगर गाड़ी गाड़ी कुछ जाएंगी मार्केट में। ओके, तो हमें चौथे अध्याय से स्टार्ट करना था। चौथा अध्याय 14वां श्लोक 4.14। 4.13 में हमने देखा था भगवान ने चातुर्वर्ण्य माया सिस्टम मतलब वर्णाश्रम के बारे में डिस्कस किया था, और इस श्लोक में 14 श्लोक और 15 श्लोक, स्पेशली 14 श्लोक बहुत फेमस है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करता है भगवान की दिव्य स्थिति के बारे में। तो ये श्लोक बताता है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबद्धते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति मीन्स कोई भी कर्म मुझे बांधते नहीं है। लिम्पन्ति, लिम्पति का मतलब होता है प्रभाव करना या चिपकना। आपने हिंदी में एक शब्द सुना होगा लिपटना, लिपटना मतलब कोई उसको जबरदस्ती चिपक जाता है, पकड़ता है पीछे से। तो नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, लिम्पन्ति मतलब भगवान से कर्म उनको प्रभावित नहीं करते। और नमे कर्म फले स्पृहा, स्पृहा का मतलब कि मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं होती है। इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबद्धते, मेरे बारे में जो ये जानता है उसको भी कर्म के फल नहीं बांध पाते हैं। तो आपने, अगर आप लोगों ने कृष्णा सीरियल देखा होगा, महाभारत तो मुझे याद नहीं उसमें है कि नहीं, बट इस प्रकार से एक लीला आती है कि भगवान को एक ऋषि साप देने वाले होते हैं। जब भगवान उनको बताते हैं कि महाभारत युद्ध खत्म हो गया, इतने सारे लोग मर चुके हैं, तो वो ऋषि भगवान को साप देते हैं कि आपके रहते हुए आपने महाभारत युद्ध को रोका नहीं, तो मैं आपको साप देना चाहता हूँ। तो भगवान उस समय बताते हैं वेट अ मिनट, फिर भगवान बताते हैं वाई द वे आप चाहो तो साप दे सकते हो, बट आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपके कोई भी साप का मेरे ऊपर तभी असर होगा जब मैं चाहूंगा। अगर मैं नहीं चाहूंगा तो आपके सांप को मैं यूज, अगर मैं चाहूंगा तो उसको यूज कर सकता हूँ, अगर नहीं चाहूंगा तो फिर उस सांप की मुझे आवश्यकता नहीं। तो उस समय फिर ऋषि को समझ में आया कि भगवान की स्थिति क्या है, और उस ऋषि ने भगवान से माफी मांगी। तो हम देखते भी हैं कि भगवान कृष्ण को गांधारी के द्वारा एक सांप दिया गया था कि उनके कुल का विनाश हो जाएगा, और कृष्ण को अलग अलग भी साप दिए गए थे, परंतु कुछ कुछ साप को उनको आवश्यकता थी अपनी लीला को पूरा करने के लिए, इसलिए उन्होंने उस साप को यूज किया, और कुछ कुछ दूसरे जो अभिशाप थे उनको उन्होंने यूज नहीं किया। दैट मीन्स भगवान उससे बंधे हुए नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कोई कर्म किया तो हमें पाप लगेगा, भगवान ने वो कर्म किया तो भगवान को पाप लगेगा, ऐसा नहीं है। और हम लोग चोरी करते, प्रभुपाद जी समझाते थे कि हम लोग चोरी करते हैं तो हमें दंड मिलता है, भगवान चोरी करते हैं तो उनके नाम से सब लोग गाते हैं कि भगवान माखन चोर, नवनीत चोर, भगवान रणछोड़ के भाग जाते हैं तो उनका नाम फेमस हो जाता है रणछोड़। अगर हम लोग रणछोड़ के भागते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम कायर हैं। तो भगवान एब्सोल्यूट हैं, जैसे कोई अगर अनंत स्थिति हो तो अनंत में से कुछ भी घटाएंगे कुछ भी जोड़ेंगे उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी तरह से भगवान चूंकि परम सत्य हैं तो वो कोई भी कार्य करते हैं वो उनके लिए पूर्ण सत्य हो जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने एक बार बताया था कि अगर भगवान कृष्ण दूसरे व्यक्ति की पत्नी के साथ रात में डांस करते हैं तो मैं उनको भगवान भगवान नहीं मानूंगा, मुझे शर्म आएगी उनको भगवान बोलने। तो सामान्यतः इस संसार के लोग कृष्ण को समझ ही नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं कि संसार की जितनी स्त्रियां हैं जितनी भी आत्माएं हैं चाहे वो स्त्रियां हो चाहे पुरुष हो सारी के सारे आत्माएं भगवान के ही पत्नी है, केवल भगवान ही पुरुष है बाकी सभी स्त्रियां हैं, पुरुष और प्रकृति है। हम जानते हैं भगवद्गीता से कि आत्मा प्रकृति कहलाती है परा प्रकृति, और सभी भगवान सभी प्रकृति के पुरुष हैं। तो भगवान के ऊपर कोई भी कर्म का प्रभाव नहीं होता है, भगवान को ना तो कोई कर्म करने की इच्छा होती है। कुछ ही पिछले अध्याय में हमने देखा था भगवान ने खुद ही बोला था कि नमे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना, हे पार्थ तीनों लोकों में लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट हो सके। तो वही भगवान बता रहे हैं मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, ना मैं कर्म फल की कामना करता हूँ, जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फल से नहीं बनता है। तो भगवान तो दूर की बात, जो इतना जान जाता है कि भगवान पे कोई भी कर्म और कर्म के फल का प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर भी कर्म के फल का प्रभाव नहीं पड़ता। दैट मीन्स आज आप लोग इस जान गए हैं या जो लोग पहले से जानते हैं तो अभी टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप सभी लोग कर्म के फल से मुक्त हो गए हैं, और जितना इस सिद्धांत को हम समझते जाएंगे उतना हम कर्म के फल से बाहर चले जाएंगे। और शुद्ध भक्त को चूंकि ये सिद्धांत पूरी तरह से क्लियर होता है कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, इसलिए शुद्ध भक्त कभी भी कर्म के फल में बनते नहीं है। जैसे एनीवे एक ब्रजमंडल में इस प्रकार से एक लीला हुई थी जो इसको समझाती है, वो लीला हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं जो यह बताते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है ना किसी राज नियमों के अधीन है, उसी तरह भगवान इस भौतिक जगत के स्रष्टा है किंतु भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वो इससे पृथक रहते हैं जबकि जीवात्माएं सकाम कर्म फलों में बंधी रहती है। तो उपाध्याय जी बताते थे, आपने देखा होगा जो ग्लोब ग्लोब को जो उठाते हैं एटलस, ग्लोब को उठाने वाले का क्या नाम है सुंदर, तो आपको याद है एक जो हम देखते हैं कि पूरे ग्लोब को एक व्यक्ति उठाए रहता है उसका नाम क्या आता है, हरक्यूलिस, हरक्यूलिस नाम है उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वेस्टर्न थियोलॉजी में है वो। तो वो व्यक्ति पूरे धरती को उठा के रखते हैं और उसका सिर एकदम झुका रहता है। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये देखो इसने धरती को उठाया, धरती के बोझ के नीचे खुद दब गया। परंतु हमारे बलराम जी इस प्रकार से नहीं है, बलराम जी सारे के सारे ब्रह्मांड को उठाए रखते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके सिर तो कुछ है भी या नहीं। चैतन्य भागवत में बताते हैं कि बलराम जी पूरे के पूरे सारे ब्रह्मांडों को, केवल एक ब्रह्मांड को नहीं जितने भी भौतिक संसार में यूनिवर्स हैं ब्रह्मांड हैं उन सबको वो उठाते हैं और सारे के सारे ब्रह्मांड उनको एक सरसों के बीज के जैसे पता चलते हैं, उनको अनुभव नहीं होता कि उनके सिर पे कुछ रखा हुआ है। तो जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो बहुत लोग भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे थे, परंतु बलराम को इस बलराम ने बोला कि एक्चुअली गोवर्धन पर्वत उठाने में क्या बात है, भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात है, तो बल ये तो पूरी धरती को उठाते हैं तब भी इनके ऊपर कोई बोझ नहीं आता है। तो इसी तरह से कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं कि एक बलराम का जिस दिन जन्मदिन था उसी दिन अघासुर को मारा गया था, बलराम को यशोदा माँ ने बाहर नहीं जाने दिया था, उनका जन्मदिन था तो उनके जन्मदिन का उत्सव की तैयारियां चल रही थी। तो उस दिन बलराम भगवान कृष्ण के साथ नहीं गए थे, उसी दिन फिर अघासुर को मारा था भगवान ने और ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, ब्रह्मा जी मोहित हुए थे और फिर ब्रह्मा जी को मोहित करते हुए भगवान एक साल तक सभी गोप कुमारों के रूप में थे। तो इस लीला का बलराम को भी पता नहीं था कि भगवान, बलराम सोच रहे थे कि ये सारे गोप कुमार सारी गाय जो है ये सब अपने अपने रूप में है, परंतु वास्तविकता में कृष्ण सभी के रूप में थे, कृष्ण ही सभी गोप थे, कृष्ण सभी बछड़े थे, कृष्ण सभी गाय थे। और एक साल बाद एक ऐसी घटना होती है जिससे बलराम को डाउट होता है, क्या होता है कि गोवर्धन के ऊपर गाय रहती हैं और गोवर्धन के नीचे बछड़े लेके ये लोग जाते रहते हैं। अभी वो गाय जो गोवर्धन के ऊपर है वो अलग गाय है और ये बछड़े अलग हैं। तब भी वो गाय बछड़े को देख के इतनी ज्यादा भाव आवेश में आ जाती हैं कि गोवर्धन से दौड़ते दौड़ते नीचे आती हैं और बछड़े उनका दूध पीने लगते। तो उन गायों को पता नहीं चलता है, एक्चुअली ये बछड़े जो थे इतने छोटे नहीं थे कि गाय का दूध पिए, वो बड़े हो चुके थे, परंतु तब भी चूंकि सबके सब बछड़े कृष्ण का रूप थे इसलिए गाय उनको देख के एकदम मोहित हो गई। और जब बलराम ने इस प्रकार से देखा कि ये सारी की सारी गाय इस तरह से दौड़ रही है, ऐसा कभी हुआ नहीं, तब फिर बलराम ने कृष्ण से पूछा कि इसमें कुछ ना कुछ तो राज है, आपने अपनी कुछ योग माया ऐसी बनाई है जो मैं समझ नहीं पाया पिछले 1 साल से। तब कृष्ण ने बताया कि एक्चुअली वास्तविक ओरिजिनल जो बछड़े और गाय और गोप हैं, उनको तो ब्रह्मा जी ने चुरा के अपने पास रखा है, ये सब जो आप देख रहे हैं ये तो मेरा रूप है। तब बलराम को पता चला। तो कृष्ण की लीलाएं इस प्रकार से होती हैं, उनके कर्म इस प्रकार से होते हैं कि बलराम भी कई बार उसको नहीं समझ पाते, बलराम को भी कई बार अचरज में हो जाते हैं, अनंत शेष भी अचरज में हो जाते हैं, भगवान नारायण भी अचरज में हो जाते हैं। जैसे भगवान नारायण जब कृष्ण का रूप देखते हैं तो बोलते हैं कि ये कौन इतना सुंदर बालक है, मैं इसको तुरंत गले लगाना चाहता हूँ। इसी तरह से जब भगवान को कालिया नाग ने पकड़ा था तो भगवान इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे थे, कालिया ने उसको उनको पकड़ लिया और पूरी तरह से अपने चंगुल में, फन में और उसके शरीर में लपेट लिया। और भगवान इस प्रकार से एक्टिंग कर रहे थे जैसे भी बेहोश होने वाले हैं, किसी भी समय उनके प्राण निकल सकते हैं, और जबरदस्ती इस प्रकार से एक्टिंग कर रहे थे जिससे कि ब्रजवासी लोग भगवान को देख के और ज्यादा वो उनकी उनके जो इमोशंस हैं भगवान के लिए और ज्यादा डेवलप। और बलराम जी उसको सहन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बलराम जी इस तरफ खड़े थे, उनको पता था ये सब ड्रामा चल रहा है। बलराम जी वो सोच रहे थे कि ये छोटा मोटा सांप कृष्ण का क्या बिगाड़ेगा, अनंत शेष के ऊपर बैठने वाले ये छोटे सांप से क्या फाइट करेंगे, ये तो इनका जोकिंग जैसा है, जैसे कई बार कोई बिल्ली जो है वो चूहे से फाइट करती है मारने के पहले, चूहा को थोड़ा सा छोड़ देती है और फिर पकड़ती है, फिर चूहा को छोड़ देती है फिर पकड़ती है। तो बलराम जी बोल रहे थे कि ये कृष्ण इसी तरीके से छोटे से सांप से लड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के लिए वो सांप एक केंचुआ के जैसा था। और बलराम देख रहे थे, देखो कृष्ण इतना ड्रामा कर रहे हैं परंतु यहाँ पे सीरियस है, यशोदा भी बेहोश हो गई है, नंद बाबा भी यमुना में कूद के जा रहे हैं, सबके सब यदुवंशी जो भी ब्रजवासी हैं मृत्यु को प्राप्त होने वाले। तब उन्होंने कृष्ण को इशारों में बोला कि अभी बहुत समय हो गया, 2 घंटे निकल गए, ज्यादा ड्रामा मत करो नहीं तो यहाँ पे मुश्किल हो जाएगी। तो उसके बाद कृष्ण ने फिर कालिया से छूट के कालिया के ऊपर डांस करना चालू किया, 2 घंटे तक भगवान कालिया के पंजों में फंसे हुए थे। तो इसी तरह से कोई भी राजा जो है वो ड्रामा या प्ले करने के लिए इस प्रकार से कार्य कर सकता है, परंतु वास्तविकता में राजा के ऊपर भौतिक जगत के कार्य प्रभावित नहीं होते, जबकि जीवात्माएं जो है वो संसार के कर्मों से बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्रभुत्व दिखाने की शक्ति होती है, प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति होती है, हमारे अंदर इच्छा होती है। समहाउ सभी के अंदर ये यूनिक, सभी को लगता है कि उनके अंदर ये यूनिक इच्छा है, परंतु हर जीव के अंदर इच्छा होती है वस्तुओं को भोग करने की और वस्तुओं के मालिक बनने की, भोक्ता और इंजॉयर एंड प्रोप्राइटर और कंट्रोलर, ये 3 इच्छाएं सभी के अंदर होती है। हम भक्ति में आते हैं तब भी वो इच्छाएं थोड़ी आध्यात्मिक हो जाती हैं, परंतु अगर कोई अटैच होना चाहे तो वो उनसे भी अटैच हो जाता है। भक्ति में आने के बाद भी हमें लगता है कि देखो अभी मैं तो इस बेस में रह रहा हूँ तो मैं बेस का इंचार्ज बन गया, कोई बोलता है बेस का क्लीनलीनेस मैनेजर बन गया मैं, कोई बोलता है कि मैं अभी किचन देख रहा हूँ, किचन में आने की हिम्मत मत करना मेरी आज्ञा के बिना, और मेरे बेस 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 में आने की हिम्मत मत करना, जो मैं बोलूंगा वही होना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम भौतिक जीवन में अपने आप को बॉस समझते हैं, उसी तरह से भक्ति में भी हम उपाधियां जो होती हैं उससे अटैच हो जाते हैं, और ये नेचर है जीवात्माएं भौतिक संसार में कर्म फलों में बंध जाती है, इसलिए संसार के प्रभुत्व दिखाने की उनको इच्छा होने लगती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता, कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होते हैं, तो इसी तरह से जीवात्माएं इंद्रिय कार्यों में लगी रहती हैं, परंतु भगवान के लिए ये कार्य आवश्यक नहीं है, भगवान इंद्रिय के कार्यों में नहीं होते। आप लोगों ने वो लीला सुनी होगी ब्रजमंडल में, ये लीला आती है पानी गांव में, वो लीला आती है पानी गांव, दुर्वासा ऋषि का भजन स्थल बोल सकते हैं। पानी गांव आता है भंदिर खदीर वन में, भगवान ने जहाँ बकासुर को मारा था उसके आगे पानी गांव आता है। तो एक बार जब गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए वेट करती हैं और कृष्ण बहुत लेट आते हैं। तो गोपियां कृष्ण से पूछती हैं आप लेट क्यों हो गए, तो कृष्ण बोलते हैं एक्चुअली मेरे गुरु जो हैं वो आए हैं गजमंडल में और मैं उनसे मिलने गया था उनकी सेवा करने, इसलिए मैं लेट हो गया। तो गोपियां बहुत खुश होती हैं, बोलती हैं हम भी आपके गुरु से जाके मिलेंगे। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है, वो पानी गांव यमुना के दूसरी तरफ रहते हैं, अभी तो रात का समय है तो नाव तो अभी मिलेगी नहीं, कैसे आप जाएंगे। गोपियां पूछती हैं कैसे हम यमुना पार करेंगे, तो कृष्ण बोलते हैं आप यमुना के पास जाके बोलना कि अगर कृष्ण एक परफेक्ट ब्रह्मचारी है तो यमुना देवी आप मुझे रास्ता दे दीजिए। तो गोपियां तो मन में ही हंसने लगती हैं कि ये कृष्ण ब्रह्मचारी कहाँ से हो गया, ये तो दिन भर हमारे साथ ही रहता है, स्त्रियों से बातचीत भी करता है कितना। तो गोपियां ठीक है जाते हैं और जाके यमुना से बोलते हैं कि यमुना देवी अगर भगवान अगर कृष्ण परफेक्ट ब्रह्मचारी है तो आप रास्ता दे दीजिए, और यमुना पूरा रास्ता दे देती है, बीच से नदी खाली हो जाती है, वो लोग चले जाते हैं, बहुत आश्चर्य होता है। उसके बाद जब दुर्वासा के पास जाते हैं तो ये लोग बहुत ज्यादा भोजन बना के जाते हैं, भोजन उनको ऑफर करने के लिए करीब 60 डिब्बे भोजन बना के ले जाते हैं, बड़े बड़े डिब्बे, और उनके देखते ही देखते दुर्वासा पूरा भोजन कर लेते हैं। और जब इन लोगों को वापस आना होता है तो ये लोग फिर प्रश्न आता है कि यमुना को कैसे पार करेंगे, तो फिर दुर्वासा से पूछती है कि आप बताइए कैसे करना। तो दुर्वासा बोलते हैं आप जाके यमुना से बोलिए कि अगर दुर्वासा ऋषि ने कभी भी दुर्वा घास के जूस के अलावा और कुछ नहीं खाया हो तो मुझे रास्ता दे दीजिए। तो गोपियों को फिर से आश्चर्य होता है कि अभी अभी तो इन्होंने 60 बड़े बड़े डिब्बे भोजन खाया है, अभी बोल रहे हैं कि यमुना में जाके बोलो कि मैंने कुछ नहीं खाया है। जाती हैं वो यमुना से बोलती हैं कि अगर दुर्वासा ऋषि ने कभी भी कुछ नहीं खाया हो तो हमें रास्ता दे दीजिए, वो यमुना भी रास्ता दे देती। तो गोपियां आश्चर्य से भरी रहती हैं और जाके कृष्ण से पूछती हैं कि ये क्या समझ में नहीं आया, क्या मिस्ट्री है, क्या आश्चर्य है। तो कृष्ण समझाते हैं कि दुर्वासा ऋषि एक्चुअली वास्तविकता में कोई चीज से अटैच नहीं है, आप लोगों को खुश होने करने के लिए उन्होंने खाया, इसलिए इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ नहीं खाया, केवल आपकी खुशी के लिए उन्होंने उस चीज को ग्रहण किया। इसी तरह से चूंकि मैं भौतिक संसार के गुणों से ऊपर हूं तो मैंने अपनी काम भावना के कारण मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, आप लोगों को खुश प्रदान करने के लिए, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं आप लोगों से बातचीत करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने क्लैरिफाई किया कि कृष्ण जो है वो बद्ध जीव के समान नहीं है, बद्ध जीव काम भावना के द्वारा ये कार्य करते हैं, जबकि कृष्ण के अंदर काम भावना नहीं पाई जाती, भौतिक इंद्रिय सुख या स्वर्ग सुख कुछ भी नहीं पाया जाता है। भगवान आप्त काम है, स्वयं में पूर्ण है, इसलिए भौतिक संसार की कोई भी सुख का उनको कोई आकर्षण नहीं है, इवन स्वर्ग के सुख का भी उनको कोई आकर्षण नहीं है, स्वर्ग के देवी देवता भी उनके नौकर के समान है। वेदांत सूत्र में बताया गया है वैषम्य नैर घृण्य न सापेक्षत्वात्, भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते, जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है, भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। और जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है वह कृष्ण भावनामृत में अनुभवी कहलाता है, उस व्यक्ति पर कृष्ण के नियम लागू नहीं होते। दैट मीन्स भगवान पे तो कर्म के नियम लागू नहीं होते हैं, साथ साथ भगवान के शुद्ध भक्त के ऊपर भी कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो भगवान के बारे में सत्य को जान जाते हैं उनके ऊपर भी कर्म के नियम लागू नहीं होते। अगले श्लोक में बताया जा रहा है कि जो इसको जानते हैं उनके साथ क्या होता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, इस तरह से जान के जो लोग कार्य करते हैं, ज्ञात्वा मतलब त्वा प्रत्यय होता है, त्वा का मतलब जानने के बाद, इस प्रकार से जानकर पूर्व अपि मुमुक्षु भी, ऐसे मुमुक्षु जो मुक्ति की आकांक्षा करते हैं, पहले ऐसे लोग जो हो चुके हैं जिन्होंने इस ज्ञान को जानकर, किस ज्ञान को जानकर, जो हमने अभी डिस्कस किया है कि भगवान पे कर्म का प्रभाव नहीं होता है, इस ज्ञान को जानकर जो कर्म करते हैं कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पहले के लोगों ने भी इस प्रकार से मेरी इस ज्ञान को जान के कर्म किया, इसलिए तुम्हें भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कर्म करना चाहिए। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इस किताब पर में श्री प्रभुपाद बताते हैं दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। कुछ मनुष्य होते हैं जो कि दूषित विचार के हैं, भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं। दूसरे मनुष्य होते हैं जो कि कृष्ण की चेतना में नियुक्त होते हैं। तो जिन लोगों के मन में दूषित विचार भरे हुए हैं, उनके दूषित विचार को शुद्धि करने के लिए क्रमिक शुद्धिकरण होता है। श्रीमद भागवत में आता है पहले स्कंद में 7वें अध्याय में 8वें श्लोक कि सामान्यतः तो पशु जीवन लोग जीते हैं। नीति शास्त्रों में एक जगह पे आते हैं, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूभिभाग भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरति। इसमें आता है ये साम न विद्या न तपो न दानम, ऐसे व्यक्ति जिनके पास आध्यात्मिक विद्या नहीं है, न तपो न तो तपस्या करते हैं, न दानम न दूसरों को दान देते हैं, ज्ञानम न शीलम न गुणों न धर्म, जिनके अंदर ज्ञान बुद्ध आत्मा और शरीर का ज्ञान नहीं है, शीलम मतलब अच्छा विनम्र व्यवहार नहीं है, न गुणों अच्छे गुण नहीं है, न धर्म आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, ते मृत्यु लोके भूविभाग भूता, वो लोग इस मृत्यु लोक में इस धरती में एक भार के समान है, बर्डन के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वो मृगा मतलब पशु के पशु तुल्य है। तो ज्यादातर संसार में लोग जिनके मन दूषित हैं वो पशु के समान रहते हैं, और उन पशुवत लोगों के लिए भी भक्ति के अनुष्ठानों को पालन करते करते धीरे धीरे कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने का मौका दिया जाता है। जैसे जो व्यक्ति पशु तुल्य है, सबसे पहले वो कर्म कांड करना सीखता है, वेदों के द्वारा वेदों की अथॉरिटी को मान के देवताओं की पूजा करता है, कर्म कांड करते करते कर्म योग करना सीखता है कि उसको अपने कर्म के फलों को भगवान को दे देना चाहिए, और कर्म योग के बाद व्यक्ति फिर ज्ञान योग में आता है जब वो शास्त्रों का अध्ययन करके संसार के अस्तित्व को जानना चाहता है और संसार के अस्तित्व को जानने का प्रयास करता है। और जब व्यक्ति ज्ञान योग में और आगे जाता है तो ज्ञान योग के बाद फिर वो ध्यान योग में आता है। ध्यान योग का मतलब होता है अष्टांग योग की पद्धति, और ध्यान योग के 8 स्तर होते हैं, उसमें से अंतिम स्तर होता है समाधि, जब वो भगवान के दर्शन करता है हृदय में, और उस समय अगर वो भगवान को समर्पित हो जाता है तब उसकी भक्ति योग प्रारंभ होता है, जो कि श्रीमद भगवद गीता में 18वें अध्याय में 54वें श्लोक में बताया है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्म न सोचती न कांक्षति। तो व्यक्ति जब ब्रह्म की स्थिति में पहुंचता है अष्टांग योग की अंतिम अवस्था में, तब वो कृष्ण भक्ति के अनुकूल होता है। और सामान्यतः जो मूर्ख लोग होते हैं, जो नए नए होते हैं, उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान नहीं होता है, तब भी वो कर्म करना छोड़ते हैं। परंतु प्रभुपाद बताते थे कि कर्म करना कोई छोड़ ही नहीं सकता है, एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं है कि हम कर्म किए बिना रह सके। 3वें अध्याय में आता है 5वें श्लोक में शायद कि नहीं कश्य क्षण अपि, एक क्षण के लिए भी हम बिना कर्म किए नहीं रह सकते। इसलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन अभी आप इस तरह से नहीं है कि आप कर्म को छोड़ सकते हैं, कर्म को छोड़ना आपके बस में नहीं है। अगर आप कर्म को छोड़ेंगे तो आप आर्टिफिशियल कार्य करेंगे और कुछ समय बाद आप फिर से इसी कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन बहुत देर से बोल रहे थे कि मैं ब्राह्मण बन जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा, तपस्या करूंगा। भगवान बताते नहीं, आप उसके लायक नहीं हो। आप अगर जंगल में जाके तपस्या करोगे, भिक्षा मांगने जाओगे, और किसी ने अगर भिक्षा देने से मना कर दिया तो उसी समय गुस्सा आ जाएगी, तलवार निकाल लो। तो आपका चूंकि जो स्वभाव है वो क्षत्रिय स्वभाव है, और ब्राह्मणों का स्वभाव अलग होता है। ब्राह्मण जो है उनके अंदर सहनशीलता और विनम्रता ये सब चीजें पाई जाती है, क्षत्रिय के अंदर वो स्वभाव नहीं होता है। इसलिए भगवान ने बोला कि आप मैं जो बोल रहा हूँ उसके आधार पर कर्म करो, अपने मन से कर्म मत करो। और पूरी भगवद्गीता भगवान ने इसीलिए बोला, और सर हर कॉन्सेप्ट के पीछे भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन का युद्ध करना ही सबसे अच्छा है। अगर युद्ध नहीं करेगा तो अर्जुन का आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना भगवान कृष्ण के लिए कार्य में लगे लगे रहने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों जैसे सूर्यदेव और बाकी जो भगवान के शिष्य हैं उनके उनके समान कार्य करे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अर्जुन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा नहीं, परंतु भगवान उसका उत्तर अर्जुन के प्रश्न पूछने के पहले ही उसका उत्तर प्रदान कर रहे हैं। अगले श्लोक में आता है किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य सुखात्। किम कर्म किम अकर्म, भगवान बता रहे हैं कि कर्म क्या कहलाता है अकर्म क्या कहलाता है। कवयो अपि अत्र मोहिता, कवयो मतलब बुद्धिमान लोग, अपि मतलब भी, अत्र मतलब इस विषय में, मोहिता मतलब कंफ्यूज्ड, कर्म क्या है अकर्म क्या है। संसार में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग मोहित होते हैं। मैं जब कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज में, आप लोगों में से अगर किसी को भोपाल सिटी पता हो, हमारे कॉलेज के जस्ट चौराहा, कॉलेज के बाहर एक चौराहा था गीत माता मंदिर, तो माता मंदिर पे एक जेरोक्स वाले की दुकान थी, उसके पास में बहुत रेगुलरली जाता था जेरोक्स के लिए। तो उसकी दुकान पे ये लगा हुआ था कि कर्म ही पूजा है और कुछ कुछ भी ऐसा लिखा हुआ था। तो उससे एक दिन जब मेरा बात हुआ तो बताता है कि कोई भी कर्म करता हूँ पूजा है। उसने बोला आप लोग जो माला कर रहे हो और मैं जो दुकान में काम कर रहा हूँ और कसाई जो पशु की हत्या कर रहा है, ये सब कुछ पूजा कहलाता है। तो मैंने देखा इसके कॉन्सेप्ट पूरे हिले हुए हैं। मैंने बोला आप किसी की जान लेना भी पूजा कहलाता है? उसने बोला हाँ पूजा कहलाता है। मैंने बोला कहाँ आपने पढ़ा ऐसा? तो उसने बोला गीता में पढ़ा। मैंने बोला गीता में कहाँ पढ़ा आपने, मुझे श्लोक बताइए। तब फिर उसने कुछ नहीं बताया। तो वो यही बताता है कर्म करो फल की इच्छा मत करो और कर्म ही पूजा है। तो मैंने उससे पूछा कौन सा वाला कर्म पूजा है, आपको पता भी है कि कितने प्रकार के कर्म होते हैं? तो उसने बोला नहीं कर्म तो एक ही प्रकार का होता है। मैंने बोला इसीलिए आपको ये कंफ्यूजन है, कभी आपने गीता खोल के नहीं देखा, केवल ये 11 जो लाइन लिखी है, कोई बोगस लोगों ने ये लाइन लिखी है। कैलेंडर में जो गीता सार आता है 10-12 पॉइंट आते हैं, सबके सब बोगस पॉइंट है, उसमें कोई ठीक तरीके से लिखा नहीं गया। परंतु भारत में वो बहुत फेमस है, लोगों के पास बोले तो कि गीता पढ़ा है, बोलते हैं वो हमें तो गीता याद है, गीता की 10 बातें आती हैं कैलेंडर में लिखी हुई, हमें सब कुछ याद है। उनको बताओ हर बात बोगस है, वो सब वो कैलेंडर फाड़ के फेंक देना चाहिए। गीता का ऐसा कौन सा सिद्धांत बोलता है कि आप पशुओं को मार रहे हो बोल रहे हैं कि ये पूजा है? तो मैंने उसको समझाया कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक कहलाता है कर्म, एक कहलाता है अकर्म, एक कहलाता है विकर्म। तो कर्म जो है वो सामान्य कर्म है जो हम भौतिक कर्म करते हैं, विकर्म जो है वो पाप कर्म है, जैसे मांसाहार करना, नशा करना, जुआ खेलना, ये विकर्म है। और अकर्म ऐसा कर्म होता है जिस कर्म का फल हमें इस संसार में नहीं मिलता है। बाकी जैसे पुण्य कार्य करेंगे तो इसी संसार में फल मिलेगा, स्वर्ग में जाएंगे, या अगर पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे। परंतु अकर्म जो है उस अकर्म का फल इस संसार में नहीं मिलता है, अकर्म का फल भगवत धाम में संचित होता है, आध्यात्मिक संचार में संचित होता है। जैसे अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं या भगवान का नाम जप करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो ये सारे कर्म जो हैं अकर्म कहलाते हैं, क्योंकि इन कर्मों का जो फल है वो आध्यात्मिक है। इन कर्मों को करने से आप इस भौतिक संसार में नहीं रहेंगे, इस कर्मों का फल भुगतने के लिए आपको भगवत धाम जाना होगा। तो जब मैंने उसको बोला कि एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं कर्म ही पूजा है, वो वास्तविकता में अकर्म ही पूजा है, ऐसा शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के कर्म पूजा नहीं कहलाते हैं, अकर्म जो है वो पूजा कहलाते हैं। परंतु उससे मुझे प्रैक्टिकली समझ में आया कि लोग कंफ्यूज होते हैं कर्म के सिद्धांत में, इसलिए भगवान यहाँ पे लिख रहे हैं कवयो प्यत्र मोहिता। संसार के महान महान विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं कि कर्म अकर्म और विकर्म क्या कहलाता है, इसलिए भगवान बता रहे हैं तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं आपको वो कर्म सुनाऊंगा, यज्ञात्वा मोक्षस्य सुभाग, जिसको सुन के तुम संसार के अशुभ से मुक्त हो जाओगे। इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कृष्ण भक्ति में जो कर्म किया जाए वो पहले जो भक्त हैं उनके आदर्श के अनुसार होना चाहिए, ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। तो कुछ और पुराणों में 3 प्रकार के और कर्म बताए जाते हैं। एक कर्म बताया जाता है काम्य कर्म, एक कर्म बताया जाता है विहित कर्म, एक कर्म बताया जाता है निषिद्ध कर्म। तो विहित कर्म मतलब ऐसा कर्म जो आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड है, और काम्य कर्म मतलब ऐसा कर्म जिसको करने की आपको इच्छा है परंतु वो न्यूट्रल है, और तीसरा होता है निषिद्ध कर्म, ऐसा कर्म जिसको आप करेंगे तो विनाश हो जाएगा। मैं सिंपल उदाहरण से समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक बार एक पति पत्नी, उनका बहुत छोटा सा बेटा था, 3-4 साल का बेटा था, तो वो लोग समुद्र के तट पे जाते हैं, बीच पे जाते हैं, या 3-4 साल से थोड़ा बड़ा था वो, नहीं 7 साल तक का, 6-7 साल तक का बच्चा है। तो माता पिता जो है बच्चे से बोल के जाते हैं, बेटा गाड़ी के अंदर ही रहना, गाड़ी के बाहर मत जाना, डेंजर होगा। तो उस बच्चे के लिए गाड़ी के अंदर रह के खेलना, कोई भी खिलौने से खेलना, उसके लिए विहित कर्म कहलाएगा। विहित कर्म मतलब प्रिस्क्राइब्ड, उसके माता पिता ने जो बोला है वो उसको वो करेगा। अभी अगर वो गाड़ी का गेट खोल के समुद्र के बीच पे जाके खेलता है तो ये उसका काम्य कर्म कहलाएगा। उसको बाहर खेलने की इच्छा है तो बीच पे खेलने से इतना कुछ लॉस भी नहीं है, तो वो काम्य कर्म कहलाएगा। परंतु अगर वही बच्चा समुद्र के पानी के अंदर जाके खेलता है तो वो निषिद्ध कर्म कहलाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा अगर समुद्र के पानी के अंदर जाके खेलेगा तो मर जाएगा। तो इसी तरह से शास्त्र के द्वारा दिए गए काम विहित कर्म कहलाते हैं। शास्त्र के अलावा हमें कुछ यहाँ वहां घूम के काम करना है जो कि नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल है, तो वो काम्य कर्म कहलाता है। परंतु अगर हम 4 नियम को तोड़ेंगे तो वो फिर डेंजरस कर्म कहलाता है। कई बार भक्त लोग आके पूछते हैं, प्रभु जी एक पुरानी मूवी आ रही है, वो अच्छी मूवी है, उसमें कुछ ऐसे सीन नहीं है, जैसे स्वदेश मूवी है। कुछ कुछ भक्त बोलते हैं कि ऐसी देशभक्ति की मूवी तो देखने में अच्छा लगता है, तो जी हम किताब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो ये मूवी देखें क्या? और उनसे पूछो तो बोलते नहीं, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, वो तो हमें देशभक्ति के लिए उत्साहित करते हैं। और अलग अलग कई ऐसी मूवी आती भी है बीच बीच में, और पहले जो ओल्ड मूवी है वो, उसके लिए कई भक्त पूछते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ विजुअल मीडियम चाहिए देखने के लिए। तो ये सारी इच्छाएं कहाँ से आती हैं? काम्य कर्म। ये इच्छाएं शास्त्र पे आधारित नहीं है, परंतु हो सकता है कोई मूवी हो आप आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करे, नेगेटिव इफेक्ट नहीं करे, तो वो काम्य कर्म में आता है। परंतु हम ऐसा नहीं है कि वो मूवी हमें देखनी चाहिए, किसी व्यक्ति को मूवी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हमारे मन में कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं। हालांकि अगर एक चीज हम देखें प्रचार के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी मूवी न्यूट्रल नहीं होती है। जैसे सामान्यतः लोग बोलते हैं दो प्रकार के कंटेंट पाए जाते हैं, एजुकेशनल कंटेंट होते हैं और एंटरटेनमेंट कंटेंट होते हैं, कंटेंट होते हैं। कुछ कुछ वीडियो एजुकेशनल होते हैं, कुछ कुछ वीडियो एंटरटेनमेंट होते हैं, परंतु एब्सोल्युटली अगर देखा जाए तो सारे के सारे वीडियो कुछ ना कुछ एजुकेशन ही देते हैं, चाहे वो एजुकेशनल वीडियो हो चाहे वो एंटरटेनमेंट वीडियो हो। एंटरटेनमेंट वीडियो का भी अपना एक प्रोपेगेंडा होता है, पूरी मीडिया मिनिस्ट्री इस तरह से कार्य करती है कि हमें अपना मैसेज पहुंचाना है, किस प्रकार से पहुंचाएं कि लोगों को पता भी नहीं चले और उनके अंदर दिमाग में जहर चला जाए। तो मॉडर्न मूवीज, मॉडर्न सो कॉल्ड नेटफ्लिक्स, ये सब चीजें हो सकता है न्यूट्रल चीजें दिखाएं परंतु उनके अंदर पॉइजन भरा रहता है और वो जहर हमारे दिमाग में चला जाता है जब हम उन मूवीज को देखते हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति में हम टाइम वेस्ट नहीं करते मूवीज को देखने का। एक बार एक नए भक्त, बहुत नया स्टूडेंट था हमारे, शायद फर्स्ट ईयर में था एमएस यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे एक कॉलेज है उसमें पढ़ता था। तो उसने आके मुझसे ये प्रश्न पूछा कि प्रभु जी एक नई मूवी आई थी 6 महीने पहले, तो वो मूवी बहुत अच्छी है, मैं आके देख लूँ, मैं जाके देख सकता हूँ क्या उसको? मुझे समझ में नहीं आया उसने मुझसे क्यों पूछा, हो सकता है उसको मेरा आंसर सुनना हो। तो मैंने उससे बोला देखो मूवी देखने से तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा 3 घंटे, उतनी देर में तो तुम 2-3 क्लास सुन सकते हो, आके म्यूजिक सीख सकते हो। तो उसने बोला नहीं मुझे बहुत इच्छा है उसकी स्टोरी जानने। तो मैंने बोला अगर आपको स्टोरी जानना हो तो जाओ विकिपीडिया में उस मूवी का नाम डालो और सिनॉप्सिस देख लो, उसमें पूरा लिखा हुआ है, इस कैरेक्टर कास्ट प्लॉट सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको मूवी पता चल जाएगी, 3 घंटे वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। उस बच्चे ने वैसा किया भी, शाम को आके बोलता है प्रभु जी धन्यवाद आपने मेरा 3 घंटे बचा लिया, उसका मूवी का स्टोरी इतना अच्छा नहीं था। तो इस पर ये सब काम में कर्म में आते हैं। परंतु निषिद्ध कर्म क्या कहलाता है कि अगर हमने 4 नियमों को तोड़ दिया तो वो निषिद्ध कर्म कहलाता है। काम्य कर्म में कई बार भक्त लोग ये भी पूछते हैं कि क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं, और अपने संक्रांति के समय पतंग उड़ाना चाहिए कि नहीं, और अलग अलग कुछ कुछ सोशल फेस्टिवल है, ये सब उसके अंदर आते हैं। तो जैसे कोई अगर क्रिकेट खेलता है तो ऐसा नहीं कि उसने चार नियम तोड़ दिए, परंतु उसने टाइम वेस्ट किया और उसके सटल वाइब्रेशन जो है वो भौतिक संसार की तरफ चले गए। जबकि आध्यात्मिक जीवन में हम क्या सिखाते हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से कृष्ण के लिए होना चाहिए, कृष्ण की सेवा में होनी चाहिए, कृष्ण की खुशी में होना चाहिए। अभी किसी को कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने कृष्ण क्रिकेट को खेल के कृष्ण को खुश कर दिया, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं है। या कोई बोले कि मैंने पतंग उड़ाया तो कृष्ण खुश हो गए, कोई कनेक्शन नहीं है, वो केवल हमारे मन में भोग की इच्छा है, इसलिए हम नाम लगाते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे कर्म कृष्ण की संतुष्टि के लिए हो। जैसे भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभु जी बिस्किट खाते हैं तो बिस्किट भगवान को भोग लगा सकते हैं, उसके उसका सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि बिस्किट भगवान के भक्त ने तो बनाया नहीं है, बाहर के लोगों ने बनाया, तो भोग लगाने की क्या जरूरत है। आजकल बहुत फैशन जैसा हो गया कि बाहर से कुछ भी लाओ भगवान को खिला दो, जैसे भगवान कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी लेके आओ उनको डाल दो, चाहे उनके खाने की इच्छा हो चाहे नहीं, बस घंटी बजाई, तुलसी डाला उसमें, वो अपना खाना चालू कर दिया, 5 मिनट भगवान को दिया, बाकी खुद खाने लगे। बट ये भक्ति का हिस्सा नहीं है। आइडियल हिस्सा है कि भक्त उसको बनाए, उसके बाद भक्त उसको भोग लगाए, उसके बाद हम स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि बाजार की कोई भी चीज हम लेके आए, बस उसमें देख लिया कि इसमें प्याज लहसुन नहीं है तो भगवान को भोग लगा, भगवान उसको क्यों स्वीकार करेंगे? जब भक्त ने नहीं बनाया है तो भगवान उसको क्यों स्वीकार करेंगे? केवल हमें खाने की इच्छा है, इसलिए हम भगवान को माध्यम बनाते हैं कि भगवान को दिए बिना कुछ खा नहीं सकते, इसलिए भगवान को दे देंगे तो काम बन जाएगा, परंतु अल्टीमेटली हमारी खाने की इच्छा है। तो इसलिए बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, क्योंकि हम जिस प्रकार से भोजन करते हैं उस प्रकार से हमारा मन भी होता है। अगर हम आदत डाल लें कि जगन्नाथ जी का हमने चावल लेके रख लिया सूखा चावल, और कोई भी रेस्टोरेंट में गए बिना प्याज लहसुन का थाली मंगाया, उसमें जगन्नाथ जी का चावल डाल दिया और खा लिया, तो हमारी चेतना का कोई विकास होने वाला नहीं है। 10-15 साल बाद भी हम बोलेंगे, यही प्रश्न पूछेंगे कि प्रभु जी इतने समय से माला कर रहे, कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि हम नियम ठीक से पालन नहीं कर रहे, भगवान की खुशी के लिए नहीं कर रहे। जगन्नाथ जी का जो चावल है वो इसलिए नहीं कि आप बाहर के रेस्टोरेंट में जाके उसको भोजन करें, उसको डाल के, वो इसलिए है कि इमरजेंसी में अगर आपको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तब उस समय यूज किया जाता है, वो रेगुलर यूज के लिए नहीं है। तो भक्ति के सिद्धांतों को अच्छे से पालन करना बहुत जरूरी है, और हर सिद्धांत को हम जितना अच्छे से पालन करेंगे हम देखेंगे कि उतने अच्छे से विकास होता है। अटेंटिव तरीके से भक्ति के सिद्धांतों को पालन करने की जरूरत है। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें, हम सभी वो करते हैं, हमारे सिर पे जो हम तिलक लगाते हैं ना, वो तिलक बहुत अच्छा होता है, बहुत स्टाइल से लगाते हैं, शीशे के सामने पूरा लाइन अच्छे से बनाते हैं। और बाकी जो तिलक है 11-12 जगह, किसी को नहीं पता कि क्या उसका क्या शेप होता है उसका, क्योंकि उसको कोई देखता नहीं है, तो हम बस काम चलाने के लिए वहां पे लगा लेते हैं बस। जबकि शास्त्रों में लिखा है कि जितने भी 12 तिलक हैं एग्जैक्टली तिलक के जैसे लगाना चाहिए। तो ये सब नियम हम भी सोचते हैं कि ठीक है अभी चल रहा है, तो ऐसा करते करते हम खुद ही नियम में वीक हो जाते हैं, और उसके बाद जब विकास नहीं होता है तब फिर हम सीनियर से जाके पूछते हैं, प्रभु जी इतना भक्ति कर रहे परंतु कुछ हो नहीं रहा है। तो भक्ति के सिद्धांतों का जितना अच्छे से हम पालन करेंगे उतना अच्छे से विकास होगा। कृष्ण भक्ति में कर्म करने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में है। कृष्ण भक्ति का उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने मनु को यह उपदेश दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु से ये संसार में चला आ रहा है। और फिर भगवान ने स्वयं इस अर्जुन को इस कृष्ण भक्ति का उपदेश देने का निश्चय किया और अर्जुन को शिक्षा प्रदान किया। और भगवान इसमें बताते भी हैं कि जब ये कृष्ण भक्ति का सिद्धांत लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग मोहित हो जाते हैं कि धर्म का निश्चय कैसे करेंगे, इसलिए भागवत में आता है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम महाजनो ये न गतस्य पंथा। महाजनों का रास्ता पालन करना चाहिए, शुद्ध भक्तों के रास्ते को पालन करना चाहिए, जो जिससे कि हम कर्म के फल को पता कर सके। इसका नेक्स्ट श्लोक जो है उसका तात्पर्य भी हमने डिस्कस कर लिया इसी में। एनीवे पर मैं श्लोक पढ़ता हूँ, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, इसका तात्पर्य ऑलमोस्ट हमने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए इसी वाले श्लोक में। 17 श्लोक है। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम बोद्ध गहना कर्मणो गति। भगवान बता रहे हैं कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, कर्म के बारे में पता होना चाहिए, बोद्धव्यम च विकर्मण, विकर्म के बारे में पता होना चाहिए, अकर्मण्य बोद्धव्यम, अकर्म के बारे में भी पता होना चाहिए। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत कठिन है। तो ये तीन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कर्म अकर्म और विकर्म, ये तीनों इस श्लोक में बताया है। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म और विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा श्री भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे इस रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात श्री भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, इसको और डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 18 वर्स जो है वो इस सेक्शन का लास्ट श्लोक है। उसके बाद भगवान एक सेक्शन चालू कर रहे हैं, उस भक्त का डेस्टिनेशन या उस भक्त के लक्षण जिसने इस प्रकार के कर्मों को प्राप्त किया है। 18 वर्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंड करेंगे। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। इसमें है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह व्यक्ति सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सभी प्रकार के कर्मों को करके वो दिव्य अवस्था में रहता है। तो कर्म में अकर्म को देखता है मतलब जो व्यक्ति पूरी तरह से इस सिद्धांत को जानता है वो समझ जाता है कि वास्तविकता में शरीर सारे कार्य करते हैं, शरीर और मन इंद्रियां मिलके कार्य करते हैं, आत्मा जो है वो कार्य नहीं करती है। पांचवें अध्याय में वो श्लोक भी आएगा कि आत्मा कोई कार्य नहीं करती है, शरीर मन और इंद्रियों और तीन गुणों के प्रभाव से संसार में कार्य किए जाते हैं। तो वो कर्म में अकर्म को देखता है, वो कोई भी कर्म करता है उसको कर्म का फल नहीं मिलता क्योंकि वो इस सिद्धांत को जानता है। और अकर्मणी चकर्म यह, और जब वो अकर्म करता है तो अकर्म में कर्म देखता है। अकर्म मतलब जब भगवान की भक्ति करता है तो वो इस प्रकार से उसमें कर्म देखता है कि उसने वो वास्तविक कर्म किया है, अपनी इंद्रियों को एंगेज किया है, आत्मा को भी एंगेज किया है। तो भगवान की भक्ति जो है वो आत्मा के लिए कर्म है और बाकी संसार के कर्म जो है वो शरीर के लिए कर्म है। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसको अकर्म के जैसा देखता है, अकर्म करता है तो उसको वास्तविक कर्म जैसा देखता है। और ऐसे व्यक्ति को संसार में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। और ऐसा व्यक्ति चाहे संसार में कोई भी कार्य करे वो हमेशा दिव्य स्थिति में रहता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त जो है वो संसार में, प्रभुपाद के बारे में ऐसा बताया था, गुरु महाराज एक्चुअली बताते थे कि गुरु महाराज ने बोला था एक बार कि प्रभुपाद कुड यूज इवन द एटम बम इन कृष्णा सर्विस। प्रभुपाद अगर चाहते तो एटम बम को भी भगवान कृष्ण की सेवा में यूज कर सकते थे, इतने बड़े भक्त थे, मतलब इतना वो एक्सपर्ट थे कृष्ण भक्ति में और कृष्ण भक्ति के प्रचार में। इस संसार की हर वस्तु को कृष्ण के लिए उपयोग किए जा सकते। तो ऐसे भक्त जो है वो कर्म के बंधन में कभी नहीं आते, वो सारे कर्म करते हुए भी कर्म से बाहर रहते। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है, उसके सारे कर्म श्री कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान कहलाता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना। अकर्म जो हमने डिस्कस किया उसका मतलब है भौतिक संसार में उसका कर्म का फल नहीं मिलता है। और जो मायावादी लोग होते हैं, शून्यवादी होते हैं, वो अपना कर्म करना बंद कर देते हैं इसी डर से कि उनको कर्म का फल मिलेगा। परंतु भक्ति के जो कर्म होते हैं उन कर्म का कोई फल रहता ही नहीं है। तो सगुणवादी इस स्थिति से परिचित होते हैं कि वो भगवान के दास हैं, इसलिए वो अपने आप को कृष्ण भक्ति के कार्यों में लगा के रखते हैं। और चूंकि सारे काम श्री कृष्ण के लिए किए जाते हैं अतः इस सेवा को करने में उन्हें दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं और कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त कर देता है। तो ये पूरा पिछले 5 श्लोकों में हमने शास्त्रों में दिए गए कर्म के सिद्धांत को समझा। और नेक्स्ट सेक्शन जो आता है 19 से स्टार्ट होके 28 श्लोक तक, मेजर 25 श्लोक तक ऐसे व्यक्ति का लक्षण और डेस्टिनेशन बताया गया है जिसने इस प्रकार से दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया है, कर्म के नियम को जानता है। उसके बाद यह अध्याय समाप्ति की तरफ जाता है, लास्ट सेक्शन की तरफ। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम 19 से स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट 19। अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं या हाथ उठा के पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण
प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हमारा एक क्वेश्चन है कर्म को लेकर कि हाँ प्रभु, ऐसे है कि जैसे ये थर्ड चैप्टर का जो स्टार्टिंग में अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सेकंड चैप्टर में वो कंफ्यूज हो जाते हैं इंटेलिजेंस में और कर्मयोग में, तो क्या हम ये इंटरप्रेट या ये समझ सकते हैं कि मतलब भगवान उनको अपने जो क्या बोलते हैं उनका जो गुण कर्म से जो वो क्षत्रिय हैं मतलब सबको इसमें एंगेज कर्म में एंगेज होने के लिए बोलते हैं, बट एट द सेम टाइम उस फोर्स को डेडिकेट करने के लिए, और जहां तक कि जो लोग ये जो उन लोगों के लिए जो लोग मटेरियल मोड में हैं और जो ट्रांसेंडेंटल हैं वो कुछ भी तरीके से भगवान की हर कैपेसिटी में कर सकते हैं, क्या हम ऐसा समझ सकते हैं क्या?
हाँ, सेम इसी तरह से है। जब तक हम दिव्य स्थिति में नहीं है तब तक हमारी जो क्रियाएं हैं, जो हमारा साइको फिजिकल नेचर है, उसके आधार पर हम कर्म करके उस कर्म को भगवान को ऑफर कर सकते हैं। और जब हम उसको करते करते शुद्ध होते हैं उसके बाद फिर हम दिव्य अवस्था में कोई भी कर्म कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरली हम भगवान को ऑफर करना सीख जाते हैं। ओके,
तो प्रभु उसी के संबंध में एक छोटा सा और है कि आपने जो अलग अलग स्टेजेस बताए थे कि कर्मयोग ज्ञान योग, लेकिन इस सब में तो जैसे सेकंड चैप्टर में भी आप देखो प्रभुपाद जो पहले पार्ट में तो शरीर और आत्मा और उसके संबंध के बारे में, लेकिन दूसरे में भी कृष्ण कॉन्शियसनेस वर्क में, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, तो उसमें थोड़ा प्रभु मतलब ये वो होता है मतलब कंफ्यूजन होता है कि एक तरीके हम स्टेजेस डिफाइन कर रहे हैं, एक तरीके से आप देखेंगे कि प्रभु जी सब में लाइक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्किंग इन इंटेलिजेंस एंड वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कर्मयोग में, तो उसमें थोड़ा प्रभु थोड़ा कंफ्यूज होता है समझ में।
एक्चुअली हमने जो डिस्कस किया वो उसको योग की सीढ़ी बोला जाता है, योगा लैडर के जैसा जानते हैं। और योगा लैडर दो प्रकार की है मेनली, एक तो जो भक्ति की योगा लैडर है, उस भक्ति की योगा लैडर को हम बोलते हैं एक्सप्रेस योगा लैडर, मतलब लिफ्ट के जैसा बोल सकते हैं। और दूसरी नॉर्मल योगा लैडर होती है जिससे सामान्यतः आध्यात्मवादी जाते हैं। तो जो सामान्य लोग जाते हैं वो सबसे पहले कर्म योग से स्टार्ट करते हैं, अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना चालू करते हैं, और साथ साथ जब वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो धीरे धीरे इस अवस्था में आते हैं कि ये संसार भोग के लिए नहीं है, संसार से मुक्त होना चाहिए। तो उस अवस्था में वो फिर ज्ञान योगी कहलाते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अभी तक वो भक्ति योग को प्राप्त नहीं किए हैं क्योंकि ये जनरल कंसिडरेशन है। और ज्ञान योग के बाद जब वो ज्ञान में आगे जाते हैं तब उनको अष्टांग योग का पता चलता है कि समाधि में भगवान को देखना चाहिए। और समाधि के 8 स्टेज पार करके जब वो लास्ट में समाधि में पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु के दर्शन करते हैं हृदय में। और नेचुरली जब भगवान विष्णु के जब दर्शन करते हैं तो सामान्यतः लोग भगवान को समर्पण कर देते हैं, और ये समर्पण जो है ये भक्ति की शुरुआत है। तो ये सरेंडर करना जो है ये यहाँ से डिवोशन चालू होता है। तो वो एक सामान्य योगा लैडर है, परंतु भक्ति में अगर हम देखें कृष्ण भक्ति के लिए तो कोई भक्त सीधे भगवान के भक्तों के संपर्क में आता है, भगवान के भक्तों के संपर्क में आके वो साधना भक्ति चालू करता है, साधना भक्ति के से प्योरीफाई होके भाव भक्ति और प्रेम भक्ति प्राप्त करता है। तो ये हमारे लिए योगा लैडर है, एक्सप्रेस योगा लैडर बोलते हैं। और जो दूसरी वाली है उसको एक्सटेंडेड योगा लैडर बोलते हैं, उससे बहुत समय लगता है, परंतु भक्ति योग में डायरेक्ट आने से प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है। तो सामान्य लोग भी अगर उनको शुद्ध भक्ति की कृपा मिल जाए तो वो एक्सप्रेस योगा लैडर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम सभी लोगों के लिए भी, हम सभी लोगों को अध्यात्म के बारे में पता नहीं था, परंतु प्रभुपाद की शिक्षाओं ने आके हमें अध्यात्म के बारे में बताया और भक्ति योग की सबसे ऊंची पद्धति के बारे में बताया।
ओके, पहुंच रहा हूं आप लोगों के पास।
तो प्रभु जी वो स्टेजेस लेकिन दोनों में रहता है ना प्रभु, लेकिन उसमें भगवान का ज्ञान नहीं रहता पहले वाले में क्योंकि वो शायद इम्पर्सनल, तो धीरे धीरे लेकिन स्टेजेस वही रहते हैं प्रभु।
नहीं स्टेजेस उसमें रहते हैं, परंतु इसमें स्टेजेस पर साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति आ जाता है,
प्रो इसमें फिर कर्मयोग होते हैं क्या
क्योंकि
प्रो, जो हम भक्ति जो प्रभुपाद जी के जो उसमें आए हम लोग, हमको तो
सामान्यतः
पता है
प्रभुपाद
फिर
जी ने
से।
कर्मयोग की
हाँ
जो
प्रभु,
सामान्यतः प्रभुपाद जी ने जो कर्मयोग की डेफिनेशन लिखी है वो भक्ति योग के जैसे ही लिखी है, क्योंकि जब हम कर्मयोग को भगवान को ऑफर कर देते हैं तो वो कर्मयोग भक्ति योग में बदल जाता है। सामान्य लोग जो कर्मयोग को भगवान को ऑफर नहीं करते उनको पता नहीं रहता है भगवान के बारे में, इसलिए वो संसार में कुछ कार्य करते हैं, ब्रह्म में लगाते हैं। नहीं तो हम लोग जो करते हैं तो वो कर्मयोग भक्ति जैसा ही होता है। इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी कर्मयोग को ट्रांसलेट करते हैं, योग एक्शन, ट्रांसेंडेंटल एक्शन इस तरह से कुछ लिखते हैं, एक्शन दैट प्यूरिफाइज अस, तो वो सामान्यतः भक्ति योग ही है, कर्मयोग नहीं। हाँ यस प्रो,
नहीं प्रो ये हो गया, यही था।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरे कृष्ण,
हेमा हेमा माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम
यस
प्रभु। क्वेश्चन कर्म से था प्रभु जी, जैसे कि ब्राह्मण होते हैं तो उनका कर्म होता है वेद पढ़ना और भगवान को जानना और दूसरों को बताना, ऐसे क्षत्रिय का कर्म अपना होता है, शूद्र का होता है। प्रभु जी जैसे कसाई होते हैं तो वो अपना, इनका दूसरा टाइप का कर्म होता है, और ये जैसे वैश्य वृत्ति होती तो इनको ये इनका कर्म अपने हिसाब से करते, तो इनको पाप लगता होगा क्या?
हाँ पाप लगता है, कसाई को पाप लगेगा, क्योंकि अगर वो किसी की जान लेगा तो पाप लगेगा। वो कर्म उसको नहीं करना चाहिए, परंतु वो उसने अपनी इच्छा से कर्म कर रहा है। जैसे आप देखें वाल्मीकि के केस में, वाल्मीकि के केस में उन्होंने बताया था, नारद मुनि ने बोला था कि वाल्मीकि आप जो पाप कर रहे हो उस पाप का फल आपको मिलेगा, तो उन्होंने कौन सा कर्म चूज किया है उस कर्म का फल उनको मिलेगा। प्रोस्टिट्यूट को भी वो फल मिलेगा, क्योंकि वो चार नियमों का पालन नहीं करते। ओके
हरे कृष्ण प्रभु जी।
कौन प्रभु, आकाशवाणी से आवाज आ रहे हैं?
हरे कृष्णा
वजन प्रभु है क्या? यस
हाँ हाँ प्रभु जी, अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी तो अपने मनाते हैं,
सुनाई दे रहा है?
हाँ सुनाई दे रहा है।
हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से अध्याय चार को प्रस्तुत किया। पहले तो आपको अभिवादन है। के लिए मैं बात करूं प्रभु जी, तो चौथे अध्याय का जो अभी आपने सत्रहवा जो श्लोक समझाया कर्मणो यपि बोद्धव्यम, इसमें कर्म अकर्म विकर्म जो तीन बताए उसमें से वस्तुतः मुझे एक बात की जानकारी चाहिए, जो ये विकर्म है उसको प्रभुपाद जी ने निषिद्ध कर्म क्यों बोला गया है? क्योंकि जहां जहां पे हम देखते हैं भगवद गीता के श्लोक में वी का जहां उपसर्ग लगता है वहां उसको विशिष्टता बोलते हैं, मतलब उसको विशेष तरीके से आदर के साथ उसको शुरुआत करते। जैसे एक श्लोक मेरे दिमाग में आ रहा है कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजिदात्मा जितेंद्रिय, ऐसा अध्याय पांच में है शायद। तो ये
में है योग युक्तो
विशुद्धात्मा जितेंद्रिय, तो
सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते।
हाँ यस, तो ये जो उसमें बताया गया कि वी का उपसर्ग लगा हुआ है ना उसमें, तो ये वी होता है जब, तो क्या है कि विशिष्यते मींस के वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने विशुद्ध मतलब निषिद्ध कर्म क्यों बोला गया है विकर्म को?
एक्चुअली वी का वी उपसर्ग के दोनों मतलब होते हैं, विशिष्ट भी होता है विरुद्ध भी होता है।
हाँ
तो यहाँ पे जो विहित जो विकर्म है उसका मतलब विरुद्ध कर्म, मतलब निषिद्ध कर्म के जैसा लिया है। तो डिपेंड करता है संस्कृत ग्रामर में उस शब्द को किस तरह से यूज किया है। वी वी उपसर्ग के दोनों मतलब होते हैं, विशिष्ट भी होता है और विरुद्ध भी होता है, दोनों मीनिंग होते हैं।
अच्छा तो प्रभु जी कर्म कर्म में अकर्म देखे और अकर्म कर्म देखे, मतलब कि जो भी कर्म कर रहे हैं उसकी फल की इच्छा से रहित उसको करें तो उसको हम कर्म बोलते हैं, और अकर्म में कर्म देखे उसका मतलब प्रभु क्या होता है?
अकर्म में कर्म मतलब जो आप भक्ति के कर्म कर रहे हैं वो वास्तविकता में आत्मा के लिए कर्म है, क्योंकि संसार के कार्यों में तो आत्मा का कोई कर्म नहीं होता है, वो तो भौतिक शरीर कार्य करता है। भक्ति हाँ। के कार्यों में आत्मा का वास्तविक कर्म होता है, तो उस तरह से अकर्म में कर्म को देखना है।
ओके, मतलब कर्म करते हुए हम किसी से मतलब कि जुड़ा हुआ ना समझे और उसको ही हम कर्म का प्रस्तुत भक्ति के रूप में।
हाँ, सिंपल शब्दों में अगर आप भक्ति करेंगे तो इसका जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। भक्ति के क्रियाकलाप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अकर्म करेंगे, वो अकर्म जो होगा वो आत्मा का वास्तविक कर्म कहलाएगा।
ओके ओके ओके, धन्यवाद।
और कोई प्रश्न था? सुभद्रा जी।
हरे कृष्ण,
कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा।
हाँ सॉरी, थैंक यू सो मच रोजी, आपकी क्लास बहुत ही अच्छी थी। पर जैसे मुझे एक क्वेश्चन आया था, आप बीच में जैसे बता रहे थे कि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए हमारा ज्यादा, जैसे कोई मूवी है उसको 3 आवर्स साथ में चले जाते हैं, तो अगर करना है तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते उसकी स्टोरी पढ़ ले, पर उतना टाइम यूटिलाइज कर सकते कृष्णा के लिए। तो प्रभुजी जैसे लास्ट टाइम मैं एक बार एक ट्रिप में गई थी बॉम्बे में, वाडा में, इको विलेज में, तो वहां पे मैं कुछ यूथ से मिली थी। तो जब उन लोगों से मैं मिली थी, वो लोग इतना ज्यादा नेगेटिविटी लेके भरे हुए थे इस्कॉन के बारे में, भले ही वो आए थे ट्रिप में, बट देवर कि अरे तुम इस्कॉन वाले ये भी नहीं कर सकते, तुम इस्कॉन वाले वो भी नहीं कर सकते, तुम गाने भी नहीं सुन सकते, तो हम क्यों आए इस्कॉन में। तो आई सेड कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सुन नहीं सकते, बट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो समा वो बात उनको बहुत अच्छी लगी और फिर ऐसे करके उनको मैंने प्रीच किया। तो अभी तक, अभी 2 साल हो गए इस ट्रिप को, बट अभी तक वो लोग मेरे कांटेक्ट में और बहुत अच्छे से वो लोग इस्कॉन से ज्वाइन हो चुके हैं। तो क्या ये सही है ये बोले कि नहीं, मीन्स देखना बुरी बात नहीं है? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि यूथ जो होते स्पेशली, अगर उनको बोलो कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, तो वो फिर आते ही नहीं है।
आप जब छोटी थी तो आपने कभी ऐसी दवाई आपकी माँ ने खिलाई होगी जो कड़वी होगी, कभी कोई दवाई खिलाई जब आप बहुत छोटे थे? आपको याद नहीं होगा शायद, नॉर्मली माता पिता जब कड़वी दवाई खिलाते हैं तो लॉलीपॉप के अंदर या मिठाई के अंदर डाल के खिलाते हैं, तो बच्चे के अंदर मिठाई चली जाती है, बच्चा फिर खा लेता है। तो नए लोगों के लिए हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, जब तक वो कृष्ण भक्ति में सिंसियरली स्थित नहीं होते हैं, और इवेंचुअली उनको समझ में आ जाता है, और जब हम देखते हैं कि वो मैच्योर हो गए हैं तो हम उनको फिर बता सकते हैं कि अभी देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि केवल टाइम वेस्ट ही नहीं, मॉडर्न मूवीज को अगर हम आप देखेंगे ना, तो बहुत सारी अलग अलग वस्तुएं जो कि ठीक नहीं है, जैसे बातचीत का अंदाज और लोगों के बीच का डीलिंग्स, एक्सप्लॉयटेटिव डीलिंग्स होता है लोगों के बीच में, और मूवीज का मैसेज भी गलत होता है, क्योंकि मेनली मेल फीमेल के बॉडीली रिलेशनशिप पे आधारित होता है। तो हम उसको एक लिमिट पे जाके तो हमें बताना ही होगा, अभी हमें ये देखना है कि वो व्यक्ति उस लिमिट तक पहुंच जाए, उसके बाद हम उसको बताएं। जैसे हम लोग जब कॉलेज टीचिंग करते हैं तो हम एकदम नए स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा नहीं बताते हैं। जब वो पहली बार कैंप में आता है, कोई बच्चा पूछता है कि हमारी गर्लफ्रेंड हो सकती है क्या, ये सब चीज, तो उसको बोलते हैं अभी आप माला करते हो। जब वो कुछ 2-4 महीने बाद फिर से कैंप में आता है तो अभी पूरा क्लास करते हैं कि कैसे मेल फीमेल का रिलेशनशिप जो है वो एक्सप्लॉयटेशन पे आधारित नहीं है, और ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, किस प्रकार से आश्रम। तो तब तक वो बच्चा अपने आप सिंसियर हो जाता है समझने के लिए, इतना मैच्योर हो जाता है। तो नए बच्चों को तो बताए, नए बच्चों को हम भक्ति में लाने के लिए बता सकते हैं, और इवेंचुअली उसको हम कीर्तन दे सकते हैं, हमारे जो यूट्यूब के वीडियोज हैं वो दे सकते हैं, और उसको समझ के जब वो मैच्योर होगा, वो खुद भगवान का नाम करना चालू करेगा, तो एक लिमिट तो उसको बताना हो। हम इस तरह से नहीं कर सकते कि पूरे लाइफ लॉन्ग हम उसको बताएं कि नहीं नहीं आप मूवी देखते रहिए, तो उसका पर्पस पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो भक्ति में एडवांस नहीं कर सकते। वो उसी तरीके से है कि एक मटके में ऊपर से पानी भरना और नीचे से छेद करके रखना तो पानी नीचे चला जाएगा, तो अल्टीमेटली किसी समय तो उसको बंद करना होगा, और वो समय हमें डिसाइड करना होगा, जब वो इतना मैच्योर हो जाए तब हम उसको बता सकें। और हमें भी अगर अपने जीवन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उसको पूरी तरह से क्लोज करना होगा, क्योंकि टाइम वेस्ट तो सेकेंडरी चीज है, परंतु उससे जो वाइब्रेशन मन के अंदर जाते हैं, इम्प्योर वाइब्रेशन, वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो विकिपीडिया मैंने जो बताया वो एक्चुअली लाइसेंस नहीं है, वो तो केवल एक नया बच्चा था, इसलिए मैंने उसको एटलीस्ट वो नहीं देखे इसलिए मैंने बोला, बाकी भक्तों को तो आवश्यकता नहीं है उस चीज के लिए, उतना समय में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ओके। सोमदेव प्रभु ने भी हाथ उठाया था. सोमदेव प्रभु कोई क्वेश्चन था आपको?
हरे कृष्ण प्रभु. यस यस हरे कृष्ण दंडवत प्रभु. प्रभु जैसे आपने बताया था कि जैसे व्यक्ति कर्म कांड से लेवल पे फिर ज्ञान योग पे पहुंचता है, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति स्टार्ट करता है, तो एक व्यक्ति ज्ञान योग के बाद भक्ति शुरू कर रहा है और एक डायरेक्ट भक्ति कर रहा है, तो दोनों में मतलब क्या डिफरेंस रहेगा?
एस सच कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. भक्ति की क्रिया इस पर डिपेंड नहीं करती है कि पहले व्यक्ति कहाँ से आया है. वो अगर सिंसियर भक्ति करेगा तो और तेजी से एडवांस कर सकता है किसी भी जगह पे. तो ऐसे इन जनरल डिफरेंस नहीं बोला जा सकता है. वो इंडिविजुअल व्यक्ति कितना सिंसियर है उस पर डिपेंड करेगा. अगर वो भक्ति शुरुआत से सीरियसली करता है तो वो बहुत एडवांस कर सकता है. ठीक है.
दूसरा प्रश्न था कि अगर जैसे हम भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति कभी कभी हमारी भौतिक इच्छा हो सकती है, भौतिक इच्छा के लिए करते हैं, तो वो किस में, वो क्या वो विकर्म में आएगा?
अगर भक्ति हम भौतिक इच्छा के लिए करते हैं तो विकर्म में नहीं आएगा. वो अकर्म जैसे ही है, परंतु अभी जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता से चीजें मांगते हैं कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए है, तो माता पिता कभी कभी दे देते हैं और फिर आगे जाके माता पिता मना भी करते हैं. इसीलिए प्रभुपाद के साथ ऐसा हुआ था एक बार. प्रभुपाद ने 1966 में जब गए थे तो उन्होंने गुलाब जामुन इस्कॉन बुलेट बोला जाता था, तो उसको गेट के बाहर टांग देते थे. गेट के अंदर मतलब हॉल में एग्जिट गेट जो होता था वहां पे टांग देते थे. और जो भी हिप्पी लोग आते थे, प्रभुपाद ने बोला था जिसको जितना खाना है खाओ, तो जो आके वापस जाना चाहते थे उनको गुलाब जामुन याद आता था, अरे यहाँ से जाएंगे तो गुलाब जामुन खाने नहीं मिलेगा. तो वो गेट तक जाते थे और गेट से गुलाब जामुन खा के वापस आ जाते थे, 4-5 गुलाब जामुन खा के. और ऐसा खाते खाते वो लोग फिर माला किए, फिर सिंसियर बने, फिर इस्कॉन में अभी तक है 40-50 साल निकल गए. तो नए लोगों के लिए तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, परंतु हमें समझना होगा कि वो भले ही वो विकर्म नहीं है परंतु भक्ति के लिए भी उतना अच्छा नहीं है. और अगर हम सिंसियर हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए तो भगवान उस भोग की इच्छा को, भौतिक इच्छा को दूर कर देंगे. जैसे जब ध्रुव जो थे वो भगवान के पास गए तो उनको अपने परदादा से भी ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए था, परंतु भगवान ने उनके ऊपर इस प्रकार से कृपा की कि उनको भक्ति प्रदान कर दी. उसके बाद वो भूल गए कि उनको ये सब चाहिए था. तो अगर कोई व्यक्ति सिंसियर है तो भगवान देखेंगे, अगर उसकी इच्छा उसको इतना ज्यादा नुकसान नहीं करने वाली है उसके आध्यात्मिक जीवन को, तो भगवान पूरा भी कर सकते हैं. और अगर भगवान देखेंगे कि उसको नुकसान कर सकती है ये इच्छा, तो फिर भगवान उसको पूरा नहीं करेंगे और भगवान उस इच्छा को शुद्ध कर देंगे. ओके.
यस
ठीक है. ओके तो इसको स्टॉप करते हैं. श्रीमद् भगवद्गीता यथा जगत गुरु से लेकर उपाध्याय.